सुख यहाँ लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहजानंद जी रचित सुखया नामक पुस्तक के प्रथम भाग में अभी हम पृष्ठ संख्या 49 पर आ गए। 18 नंबर की ये जो गाथा है उनकी जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। ज्ञात्वा रागफलं दुःखं जीवानां भ्रमतामिह रागं मुञ्चानि नो मुक्त्वा स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। इस लोक में भ्रमण करने वाले जीवों के दुख को राग का फल जानकर, यानी जो दुख हो रहा है वो राग का फल है, क्या मैं राग को नहीं छोड़ूं? यानी मुझे राग को छोड़ना है क्योंकि उसी से मैं दुखी हो रहा हूँ। नियम से छोड़ूंगा ही तब राग को छोड़कर मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हूँ। पहले में पहले राग से भेद ज्ञान करना है और उससे अभिमुख होकर अपने में लीन होना है, आत्मभावना करनी है, समाधि करनी है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। जितने भी जीव घूम रहे हैं यह सब राग का फल है। घूम रहे ने संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, इनको दुख ही रहा ममता के कारण, मोह के कारण। ये आज तक भी क्लेश भोग रहे, ये ने हम इन्होंने सुख प्राप्त नहीं किया। किसी को भी बिठाकर उसकी कहानी सुन लो, सब कुछ सुनने के बाद अंत में परिणाम यही निकलेगा कि किसी में राग है अतः दुखी है। अपने दुख की जितनी भी कहानी बतावेगा उसमें किसी ना किसी से राग मिलेगा। बस उसी राग के ही परिणाम के कारण वह दुखी है। कोई दुख की कहानी में यह बतावेगा कि मेरी समाज में इज्जत न हुई, कोई यह बतावेगा जैसा मैं चाहता था वैसा न हुआ। यह सब दुख रागादि के ही कारण तो हुआ है, अन्य कुछ नहीं। यानी वो इच्छा वगैरह भी तो राग ही तो है ना, है इच्छा के कारण तो उसकी पूर्ति में लगा हुआ है। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे राग मोह ममता छोड़ देना चाहिए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब करना तो सब पड़ेगा ही, किंतु हे भैया सब कुछ करते हुए भी यही भाव रखो कि ये मेरे कोई नहीं, मैं इनका कुछ नहीं, न मुझे सुख पहुंचा सकते हैं, न मैं ही इन्हें सुख पहुंचा सकता हूँ। पहले में पहले अभिप्राय में लेने की बात है, निर्णय करने की बात। बच्चों को छोड़ दे ऐसा नहीं कह रहे तुम, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये तो मुझे करना पड़ रहा। यानी ये अपना राग ही है जिसके कारण हम करते भी है, परंतु तो होते हुए कार्यों को अपने से भिन्न पहचाना। जैसे शरीर भिन्न है, ये वाणी आदि जो कार्य हो रहा है वो अपने भी भिन्न है, राग अपने से भिन्न है। ऐसा विचार करने से दुख न होगा। यानी हम पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना उनको सुखी कर सकते ना दुखी कर सकते, हम अपने में ही अपराग रूप परिणमते हैं। पर इस राग से भी हम जुदा है, अब तो ये जुदा है, ये जुदा है, ये जुदा है, फिर तो मैं तो इस शरीर वाला मैं हूँ ऐसा मानकर शरीर के साथ तो एकत्व करता है। वो जुदा है परंतु उनके प्रति राग है, उससे भेद ज्ञान नहीं करता है। यानी अपने शरीर और राग के साथ एकत्व करके ये दूसरे जुदे है, इनके कारण मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है, वो बात नहीं होनी। मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, चैतन्य मैं हूँ, ऐसा पहले में पहले नक्की करना है। यानी राग जब छूटेगा, जब उसके साथ भेद ज्ञान करके लक्षण के द्वारा उसको पहचाने, ये दुख रूप भाव है और मैं तो सुखमय भाव हूँ, चैतन्यमय भाव हूँ। इन सब दुखों को देखकर तथा अपने दुखों को विचार कर, क्या मुझे राग नहीं छोड़ना चाहिए? अवश्य ही त्याग करना चाहिए। यानी राग ये छोड़ने लायक है, हेय है, ये नक्की करना है पहले अपने अभिप्राय में। वो छूटेगा अपने समय पर जब, और भूमिका के अनुसार उतना वैसा वैसा राग आएगा भी, परंतु वो करने लायक नहीं है पहले ये नक्की करना है। यहाँ क्या मुझे त्याग करना चाहिए ना, वो हेय है। शराब पीने वाला शराब की दुकान पर शराब खरीदने जाता है तो कहता है, देखो भाई मुझे विलायती असली माल चाहिए, मुझे बढ़िया वाली शराब चाहिए। तब वह उसको यही दिखाकर कहता है, क्या तुझे इन बेहोश पड़े हुए अपने बाप चाचा को भी देखकर विश्वास नहीं होता कि मेरी शराब बहुत बढ़िया व अच्छी होगी? अरे भाइयों, यदि राग का फल देखना है तो स्वयं के दुख देखो और इन सभी संसारी प्राणियों के दुख को देख लो कि राग के कारण कैसे कैसे कष्ट उठाए जा रहे हैं। यानी सारे जो दुख है वो राग के कारण है। अपने दुखों को याद करो या सभी संसारी प्राणियों के दुख लो, राग के कारण ही वो कष्ट उठा रहे हैं। और तूने स्वयं कैसे कैसे कष्ट झेले, अब क्या ये देखकर भी तुझे विश्वास नहीं होता? यह राग बुद्धि छोड़ने योग्य है। राग बुद्धि है, राग रूप मैं हूँ ऐसी मान्यता, उसको राग बुद्धि कहेंगे। यदि जानने में आ गया कि मैं तो स्वचतुष्टय रूप हूँ, तो कोई क्या इस ज्ञान को नष्ट कर सकता है, विपरीत कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। जितने भी दुनिया के जीव है उन सब से मैं निराला हूँ। ये सब राग के परिणाम देखकर यही धारणा बनावे कि मैं तो चैतन्य स्वरूप, अपने सहज स्वरूप में रहने वाला अनादि अनंत हूँ, अतः मैं इन सबको त्याग कर ज्ञायक भगवान के दर्शन करूँ। यानी ये रागादि सब छोड़ने लायक है और अपने ज्ञान में, अपने चैतन्य स्वभाव को ही देखते रहना है, उसी में लीन होने लायक है। हम हेय गेय और उपादेय की बात करते हैं, वो किस में? श्रद्धा में पहले लेना, प्रतीति में लेना कि कैसे राग हो गए फिर भी ये करने लायक नहीं है, पहले में पहले नक्की करना। यह जीव भगवान के दर्शन ज्ञान से ही तो करता है, और उपयोग में यदि राग बसा हुआ है तो भगवान कैसे दिख सकता है? उपयोग में राग न हो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यानी जब अपने उपयोग रागादि में अटका हुआ है तो भगवान के, यानी अपने भगवान के भी नहीं और उस भगवान के भी दर्शन नहीं होंगे, उनका स्वरूप अपने ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि राग यानी और उपयोग, ज्ञान और उपयोग राग, इसको एक में कर ये उसको अपना स्वरूप समझ रहा है। तो ये भेद ज्ञान की बात तो हम हर ग्रंथ में उसी को पढ़ा है हमने।
यहाँ पर यही बता रहे हैं, हम राग के साथ भगवान के सामने जाएंगे तो उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे और मुझे ये दो वो दो ऐसे कुछ ना कुछ बातें हाँ। मन में सोचेंगे, तो वह जीव स्वयं को रागी तो मान रहा है, भगवान को भी रागी मान रहा है, ख्याल में? वहाँ कह रहे हैं ना, उपयोग में राग न हो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
यानी उपयोग राग को जानने में अटका है, राग से विमुख नहीं हुआ है तो अपने ज्ञान में स्वभाव भी ख्याल में नहीं आएगा।
उपयोग का दो अर्थ होता है, कभी कभी ज्ञान और दर्शन के बारे में भी होता
है, उसी के लिए उपयोग यहाँ लेना,
कभी कभी अशुद्ध उपयोग
वो यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो उपयोग है ना, वो तो ज्ञान, यानी क्योंकि हम उपयोग अपना ज्ञान किसको जानने में लगाया, राग में लगाया, राग में अटके हुए, और उससे विमुख होकर अपने ज्ञान स्वभाव को ही ज्ञेय बनाना। अभी हम किस में उलझे? राग में उलझे। यही तो बात बराबर बता रहे हैं ना कि भेद ज्ञान करके उससे विमुख होकर अपने सन्मुख होना। अभी जो हमारे समाधि तंत्र में यही बात हुई बारंबार, यानी राग राग की ओर अगर उपयोग जुड़ा है तो उपयोग को उपयोग में लगाना है। ये आते हैं ना समयसार में, उपयोग उपयोग में, उपयोग क्रोधादि में नहीं वगैरह। हाँ
क्या कहते हैं?
संवर अधिकार।
आपने बोला ना?
नहीं, लक्ष्मी ने बोला।
उसने मुंह हिलाया, रावा गया।
उन्होंने भी कहा। हाँ वन एटी। हाँ देखो आगे क्या लिखते हैं, देखो चौथी लाइन, उपयोग में राग न हो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, जब राग पर उपयोग है तब स्वभाव पर नहीं।
राग
है ना, राग को जानने में अटका है, और जब स्वभाव पर उपयोग है तब उपयोग राग पर नहीं है, तब मैं राग छोड़कर अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हूँ। राग को छोड़कर इन्हें उपयोग राग आदि में लगाना छोड़ दिया और अपने को लगाया, अपने ऊपर लगाया, उसको कहेंगे हमने राग को छोड़ दिया। राग जो छूटना है, नहीं तो पर्याय में राग नहीं है के तो है ना, उसको छोड़ दिया है ना, उसके उपयोग उसके तरफ से हटा दिया, उसको छोड़ दिया। भैया यह राग तो एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तथा राग द्वेष रहित वीतराग अवस्था को एक न एक दिन तो अवश्य ही धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि तो वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं होगे, और वो अरिहंत दशा बिना सिद्ध अवस्था भी नहीं होगी। तब क्यों अपना समय नष्ट करके दुख में रुलता फिरूं? यानी राग करते करते ही समय बिता रहा है और इसको वीतराग होना है, तो राग छोड़ने योग्य है ये पहले में पहले नक्की तो करना है। इसके लिए कोई अवस्था विशेष निश्चित नहीं कि वृद्धावस्था में ही राग द्वेष छोड़ना चाहिए या अमुक अवस्था में त्याग करना चाहिए, ये तो जितना शीघ्र छूट जावे उतना ही अच्छा है। जैसे जैसे राग बुद्धि करोगे वैसे ही कर्मबंध होते जाएंगे, और जैसे जैसे वीतरागी होगे तो कर्म स्वयं ही तलातर टूटते चले जावेंगे। अतः आत्मन, तू अपना आत्महित पहचान, तेरा स्वभाव पाप रूप नहीं, स्वयं का सहज स्वभाव चेतन है, ज्ञान पुंज है। भैया राग था शादी की, राग था बच्चे पैदा हुए, अब इनके फंद को स्वयं ही तो भोगेगा, अन्य कौन भोगेगा? आनंद का घातक राग है, आनंद का और राग का बैर है, एक के होने पर दूसरा नहीं ठहर सकता। जब ये शरीर भी अपना नहीं तो दूसरों को अपना मानना कहाँ की बुद्धिमानी है? सोचो तब अपना कैसे हो सकता है उनका शरीर? अब जब दूसरे जीव अपने नहीं बन सकते, फिर ये चेतन अचेतन पदार्थ धन वैभव आदि कैसे अपने हो सकते हैं? यहाँ का पॉज किया मैंने।